26 जनवरी दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। 26 जनवरी पर राजपथ पर भारत की सैन्य शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन। देखेंगे राफेल विमान खरीद में कीमत पर क्यों नहीं हो पा रही है सहमति, और T20 में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर प्रभावशाली जीत।
I think it was a good game. We batted really well. We got those extra runs and also the bowling I feel was good. Aussie batting lineup more often than not.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। भारत ने मंगलवार को अपना 67वां गणतंत्र दिवस मनाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। राजपथ पर आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जाकर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। फ्रांसीसी सेना ने भी परेड में हिस्सा लिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। मलेशिया के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि रजाक के बैंक खाते में $68.1 करोड़ की जो रकम ट्रांसफर की गई थी वो उन्हें सऊदी शाही परिवार से तोहफे में मिली थी। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अम्पादी अली का कहना है कि वो इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह रकम सरकारी निवेश फंड से आई थी। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि सीरिया में रूसी सेना ने जिस तरह से वहां की सरकार की मदद की है उससे वहां चल रहे गृहयुद्ध की दिशा बदल गई है। सोमवार को दक्षिणी प्रांत डेरा में मौजूद कई मुख्य जगहों पर सेना के कब्जे के बाद उनका यह बयान आया है। लावरोव ने तुर्की के उस बयान की भी आलोचना की है जिसमें तुर्की ने शुक्रवार से शुरू हो रही शांति वार्ता में कुर्द संगठनों के शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा, मैं पिछले कुछ समय से सुन रहा हूं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि सीरिया में शुरू होने वाली शांति वार्ता में कुर्द संगठन हिस्सा लें, खासकर डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी। बिना इस संगठन के शांति वार्ता का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। सीरिया की कुल जनसंख्या में कुर्दों की संख्या करीब 15% है। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव के शब्द। एडिलेड में हुए पहले T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 37 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम 19.3 ओवरों में 151 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से विराट कोहली ने 90 रन बनाए जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट मिले। सर्बिया की एक वृद्ध महिला ने अपने पति से उत्तराधिकार में मिले लगभग $7,00,000 दान में दे दिए हैं। 86 वर्षीय मारजा जलाटिक पूर्वी सर्बिया के पहाड़ी इलाके में एक मिट्टी की झोपड़ी में अकेली रहती हैं। 5 साल पहले उन्हें पता चला कि अरसे से उनसे अलग रह रहे उनके पति का ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया है। 2011 में मारजा ने अपने पड़ोसी से इस बारे में और पता लगाने को कहा और पिछले साल उन्हें इस रकम के बारे में पता चला जो उनके पति अपने पीछे छोड़ गए थे। अमेरिका में योग गुरु विक्रम चौधरी को अपनी पूर्व वकील मीनाक्षी जाफा बोर्डन को $9,00,000 यानी करीब लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देना होगा। अमेरिकी कोर्ट ने मीनाक्षी की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। भारतीय गणतंत्र की 66वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज दिल्ली में एक भव्य परेड की सलामी ली। इस दौरान भारत की सैन्य, सांस्कृतिक और लोक विरासत को भी पूरी सज धज के साथ पेश किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इस वर्ष की परेड के मुख्य अतिथि बने और गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहली बार फ्रांस के सैनिकों ने पहली विदेशी टुकड़ी के तौर पर राजपथ पर मार्च किया। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रवि।
दिल्ली के राजपथ पर उत्सव का माहौल है। मौका है भारत के 67वें गणतंत्र दिवस का, जहां देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति के रंग और सैन्य शक्ति का साझा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमर जवान ज्योति पर जवानों को श्रद्धांजलि के बाद हुई। जहां पिछले साल गणतंत्र दिवस पर अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, वहीं इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इस मौके पर भारत के खास मेहमान थे। और ये पहला मौका भी था जब किसी दूसरे देश की सेना ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया हो। फ्रांस के 76 सैनिकों का सबसे पुराना रेजिमेंट जब मार्च पास करता हुआ गुजर रहा था, उस वक्त सलामी मंच पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मौजूद थे। कश्मीर से लेकर केरल तक भारत के लगभग हर प्रांत की झांकियों ने समारोह में चार चांद लगा दिए। वायुसेना के 27 अत्याधुनिक विमानों ने भी हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया, जो समारोह का मुख्य आकर्षण था। हालांकि चरमपंथी हमले की आशंका को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजपथ और दिल्ली के मुख्य इलाकों में दुकानें बंद रहीं और रेड़ी वाले तक सड़कों से नदारद थे। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
वहीं दूसरी ओर भारतीय कश्मीर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलगाववादियों ने बंद का आह्वान किया, जिसके कारण आम जनजीवन ठप रहा। लेकिन जम्मू और श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी समारोहों का खास आयोजन किया गया था। इस बीच दक्षिणी कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ के दौरान लश्करे तोयबा का एक चरमपंथी मारा गया, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर कश्मीर में बंद का आह्वान तकरीबन सभी अलगाववादी गुटों ने किया था। सईद अली गिलानी की अध्यक्षता वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक वक्तव्य में बताया कि ये बंद कश्मीर में भारतीय शासन के विरोध में एक जनमत संग्रह है। दो दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर के सभी संवेदनशील स्थानों के बाहर सुरक्षा को सख्त किया गया था और सरकारी समारोहों के स्थानों के इर्द गिर्द नाकाबंदी की गई थी। इस बीच जम्मू में गवर्नर NN वोहरा और श्रीनगर में उच्च अधिकारी असगर सामून ने परेड पर सलामी ली। श्री वोहरा ने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन नीतियों से ही कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया तेज हो सकती है। उन्होंने ये माना कि पिछली सरकार ने कई कदम उठाए थे, लेकिन राज्य में आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई है।
अगरचे साबका हुकूमत ने कई कदम उठाए थे, मगर मुख्तलिफ वजह से इक्तसादी तरक्की अभी तक रफ्तार नहीं पकड़।
7 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के देहांत के बाद पहली बार इनकी सुपुत्री और पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने किसी सरकारी समारोह में भाग लिया। इधर दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग में लश्कर ए तैयबा के चरमपंथी मुश्ताक अहमद को सेना और पुलिस ने कल रात हुई एक मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। मुश्ताक के जनाजे में हजारों लोगों ने भाग लिया और बाद में पुलिस और सेना के विरोध में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसके दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई वर्ष बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सैनिक अधिकारियों को मिठाइयां भेंट की। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
कल भारत और फ्रांस ने 36 रफेल युद्धक विमानों की खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन अभी तक विमान के मूल्य के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है और इस बारे में बातचीत अभी भी जारी है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह से संपर्क कर पूछा कि इस बारे में सहमति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल में हुए फ्रांस दौरे के दौरान ही बन गई थी, लेकिन अभी तक दाम पर एक मत न बन पाने का मतलब है कि दोनों पक्षों में इस बात को लेकर अभी भी मतभेद है।
देखिए, प्राइसिंग की जो मुद्दा है, 2015 में जब प्रधानमंत्री पेरिस गए और उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, वह भी सिर्फ एक अनाउंसमेंट था, जॉइंट अनाउंसमेंट। उसके अंदर ना कोई इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन होने की बात हुई थी। और ये 36 हवाई जहाज के लिए था, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसका कितना हिस्से पुर्जे भारत में बनेंगे, जिसको कि हम ऑफसेट्स बोलते हैं, वो 50% होंगे जैसे कि पहले 126 हवाई जहाज की डील में थे, या 30% होंगे या 0% होंगे, इन सब बातों पर पहले विवाद चल रहा था। उसके साथ ही विवाद इस बात पर भी था कि इन हवाई जहाज की कीमत क्या होगी, और ये विवाद अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये नेगोशिएशंस अभी तक चल रहे हैं, और जबकि फ्रेंच के राष्ट्रपति यहाँ पर हैं, और तब भी ये आईजीए जो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हुआ है। अभी जो कल जैसा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने क्लैरिफाई किया बाद में दोपहर के वक्त कि यह आईजीए नहीं है, यह सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और जब प्राइसिंग नेगोशिएशंस पूरे हो जाएंगे तब ये आईजीए साइन होगा, जिसके अंदर ये कमर्शियल टर्म्स भी मेंशनड होंगे।
सोर्सेस से कहा जा रहा है कि खासा डिफरेंस है, भारत की तरफ से $7 बिलियन की डील कही जा रही है, जबकि फ्रांसीसी कह रहे हैं कि $11 बिलियन की डील है। ये तो खासा बड़ा डिफरेंस हुआ प्राइस में।
हाँ, देखिए, दो जो डिफरेंस प्राइसिंग का है वो दो मेजर मुद्दों पर आ रहा है, जहां तक कि जो मुझे ज्ञात है और जो मैंने सुना है। पहला मुद्दा तो ये है कि एक एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात हो रही है। जब वो 126 हवाई जहाज की जो बिड थी उसमें जो उन्होंने कीमत दी थी उसको, उस पर एनुअल इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट कितना लगाया जाए। जैसा कि मैंने सुना है कि फ्रांस कुछ 5-6% पर हर साल की बात कर रहा है, और भारत की साइड 1-1.5% की बात कर रही है। वह मुख्य मुद्दा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2008 के बाद उसको कंपाउंड अगर आप करें हर साल 5% से या 6% से और या 1-1.5% से, तो वह कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा मुद्दा है कि हम उसके साथ फ्रांस से आप क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, उनकी कीमत के ऊपर भी विवाद चल रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि विवाद काफी ज्यादा है, गैप काफी ज्यादा है, इसीलिए जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर आ रहे थे, प्रधानमंत्री यहां मौजूद है, तब भी ये जो गैप है वो क्लोज नहीं हो पाया है, वह नजदीक नहीं हो पाया है और सॉल्व नहीं हो पाया है। जहां तक कि अभी फ्रांसीसी कंपनी है डसाउ, उन्होंने अनाउंस किया है कि हमें उम्मीद है कि हम अगले 4 हफ्ते में इसको सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता है कि शायद वह ज्यादा ही आशाजनक है। अगर वह इतना आसान होता सॉल्व होना तो अब तक सॉल्व हो गया होता।
सुशांत, आप रक्षा विश्लेषक हैं, इन चीजों पर नजर रखते हैं, आपको लगता है ये बहुत महंगा सौदा है भारत के लिए, इससे बेहतर विकल्प थे शायद?
जी बिल्कुल, देखिए, ग्रिपिन का जो एयरक्राफ्ट है जो कि नंबर 2 चल रहा था, वो तो बिल्कुल भारत में कितनी बार आए हैं, उन्होंने बोला है कि साहब हम आपको इससे बेहतर हवाई जहाज देंगे, हम भारत में ही इन हवाई जहाज को बनाएंगे। और जैसा कि अमेरिकन सोर्सेज ने भी बोला है कि उन्होंने भी F-16 F-18 को भारत में बनाने की बात की है। उसके मुकाबले जिस तरह की कीमत हम सुखोई के लिए पे करते हैं, हम वर्चुअली 3-4 सुखोई हवाई जहाज खरीद सकते हैं आप एक रफाल के बदले में, जो कि बिल्कुल ही मतलब कोई समझ में नहीं आता है कि आप इतना महंगा हवाई जहाज क्यों खरीद रहे हैं। और ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर भी नहीं है, भी आप एक इंटरिम हवाई जहाज खरीद रहे थे जब तक कि भारत अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं डेवलप करता है।
ये थे इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में परंपरा तोड़ने के लिए महिला संगठन भूमाता ब्रिगेड की गणतंत्र दिवस पर पूजन करने जा रही महिलाओं को पुलिस ने मंदिर से 80 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इससे पहले कुछ स्थानीय महिलाएं इस ब्रिगेड के विरोध में आ गईं और मंदिर के आसपास जमा हो गईं। मैंने नागपुर फोन कर स्थानीय पत्रकार संजय तिवारी से बात की और दिन भर के घटनाक्रम का विवरण मांगा।
जी, ये भूमाता ब्रिगेड ने पहले ही घोषित किया था कि गणतंत्र दिन पर वो कुछ बसों में भरकर महिलाएं पूना से रवाना होंगी और शनि शिंगणापुर जाकर वो जो चौथरा है, जो प्लेटफॉर्म है जहां पर वो काला पत्थर शनि का प्रतीकात्मक स्वरूप करके स्थापित है, वहां चढ़कर वो पूजा करेंगी और दर्शन लेंगी। तो वो पूना से जब निकली आज सवेरे तो शिरूर, जो पूना के पास स्थान है, वही पुलिस ने उनको रोक लिया और महाराष्ट्र पुलिस ने करीब 2 घंटे तक उन्हें रोके रखा था। काफी मशक्कत के बाद फिर महिलाएं आगे निकली, लेकिन जिस तरह से अहमदनगर जिले में वो दाखिल हुए, सुपा नाम की जगह है, जहां उन्हें फिर से रोक लिया, तो वहां पर पुलिस से काफी उनकी बहस हुई और महिलाओं का गुस्सा काफी चरम पर था। महिलाएं रोके जाने के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, बहस कर रही थी पुलिस से, उन्होंने सड़कों पर ही आंदोलन भी शुरू किया। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस का जो रवैया था जिस तरह से, और महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाई।
और वहां पर जो स्थानीय महिलाएं थी, क्या वो लोग विरोध कर रहे थे इन महिलाओं के वहां पहुंचने का?
जी बिल्कुल, जो स्थानीय महिलाएं हैं, मैं आपको बता दूं, करीब 4000 की आबादी का छोटा सा गांव है शनि सिंगनापुर, और ये वही जगह है जहां पर सदियों से किसी घर पर दरवाजे नहीं है, और यदि दरवाजे हैं तो ताले नहीं लगते। शनि का ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध कह लीजिए मंदिर है यहाँ पर, लेकिन ये रूढ़ी परंपरा प्रथाओं को काफी मानने वाले लोग हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर महिलाएं दर्शन तो कर सकती हैं, लेकिन दूर से वो जो चौथरा है वहां पर चढ़ने की या उन्हें तेल चढ़ाने की इजाजत नहीं है। तो जो गांव की महिलाएं हैं उनमें से दो महिलाएं तो हालांकि अभी ये 11 सदस्यीय बोर्ड में चुनी भी गई हैं, एक महिला खुद उस बोर्ड को लीड कर रही है चेयरपर्सन के तौर पर, लेकिन उन महिलाओं का भी विरोध है कि इस तरीके से परंपरा को न तोड़ा जाए।
ये बताइए, ये जो पूरा विवाद है इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, क्या इसकी पृष्ठभूमि है?
करीब 500 साल पुराना मंदिर है ये। परंपरा ये है कि महिलाओं को यहाँ पर पूजा की या तेल चढ़ाने की इजाजत नहीं है। पिछले वर्ष नवंबर में एक छोटी सी घटना हुई थी, एक महिला ने वहां पर चढ़कर चौथरे पर तेल चढ़ाया था और पूजा की थी। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद में काफी हड़कंप मच गया था। शनि सिंगनापुर इस गाँव में एक दिन का बंद रखा गया था और दुग्धाभिषेक करके कथित तौर पर उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी करी गई थी। तो उसके बाद में दिसंबर महीने में नागपुर में जो महाराष्ट्र विधानमंडल का शीत सत्र अधिवेशन हुआ, उसमें इस घटना के खिलाफ काफी आवाजें उठी और महिलाओं को यानी आधी आबादी को वहां पर पूजा करने से क्यों रोका जाता है, इस तरह के सवाल उठे थे। लगभग उसी समय ये जो फरवरी महीने में देवस्थान के बोर्ड की चुनाव हुए, वहां पर दो महिलाएं चुनी गई, एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया। उम्मीद ये थी कि आधी आबादी की आवाज सुनी जाएगी, लेकिन उन महिलाओं ने भी परंपराओं का समर्थन किया और ये कहा कि महिलाओं को इजाजत नहीं दी जा सकती। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है आधी आबादी की कह लीजिए, महिलाओं की कह लीजिए, ये जारी तब से हुई और आज भी उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया।
आधी आबादी की लड़ाई, ये थे स्थानीय पत्रकार संजय तिवारी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। मलेशिया के अटॉर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री नजीब रजाक को करोड़ों डॉलर के कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है। नजीब रजाक के निजी खाते में करीब 68 करोड़ डॉलर डाले गए थे, जिसे लेकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मलेशिया के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये रकम नजीब रजाक को सऊदी अरब के राज परिवार की तरफ से दी गई थी। मलेशिया की विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री को दी गई क्लीन चिट पर सवाल उठाए हैं। बीबीसी संवाददाताओं के संवादों का सार पेश कर रही हैं हरिता कांडपाल।
मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक को करोड़ों डॉलर के कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में क्लीन चिट मिल गई है। मलेशिया के अटॉर्नी जनरल ने नजीब रजाक को भ्रष्टाचार के एक मामले में बेकसूर करार दिया है। दरअसल नजीब रजाक के निजी खाते में 68 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए गए थे। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जांच में पाया गया कि ये करोड़ों डॉलर सऊदी अरब के राज परिवार की तरफ से निजी तोहफे के तौर पर दिए गए थे। वहीं इसके एवज में नजीब रजाक ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। मलेशिया के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अपांदी अली ने कहा कि वे इस बात पर संतुष्ट हैं कि इस लेन देन में कुछ भी आपराधिक नहीं पाया गया। हालांकि नजीब रजाक पर उनके विरोधियों ने आरोप लगाया था कि ये पैसा सरकारी निवेश फंड की तरफ से आया था। प्रधानमंत्री नजीब रजाक लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन उनके विरोधी उनके इस्तीफे को लेकर दबाव बनाते रहे। मलेशिया के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अपांदी अली ने कहा,
मलेशिया की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी MSCC ने जो सबूत दिए हैं और गवाहों ने जो बयान दिए हैं, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 22 मार्च 2013 से 10 अप्रैल 2013 के बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री के निजी खाते में 68 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए गए। वो सऊदी राज परिवार की तरफ से एक निजी भेंट थी। इसके एवज में उनसे कुछ नहीं मांगा गया। गवाहों और कागजात के आधार पर मैं कह सकता हूं कि करीब $2 अरब से जुड़े मामले में भी कोई आपराधिक मामला नहीं बनता।
मलेशिया के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों ने गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें चंदा देने वाला शख्स भी शामिल है। बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री के निजी खाते में पहुंचे $करोड़ों को लेकर मलेशिया की जनता में काफी गुस्सा और उहापोह मच गया था। प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को इस मामले में क्लीन चिट तो मिल गई है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं। जैसे प्रधानमंत्री को $करोड़ों के चंदे की ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम अपने निजी खाते में मंगवाई। एक और सवाल जिसका जवाब अब तक साफ नहीं किया गया है कि इतनी बड़ी रकम का क्या इस्तेमाल किया गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक नजीब रज्जाक ने $62 करोड़ लौटा दिए थे, जबकि बाकी के करीब $6 करोड़ कहां गए इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नजीब रज्जाक की पार्टी उन्मो के नेताओं ने दावा किया है 2013 के चुनाव के प्रचार के लिए जो रकम इस्तेमाल हुई वो इसी चंदे से ली गई थी, लेकिन रज्जाक के विरोधियों का कहना है कि चंदे की रकम का इस्तेमाल राजनीतिक समर्थन खरीदने के लिए किया गया। मलेशिया में ये भी कहा जा रहा है कि क्लीन चिट देने वाले अटॉर्नी जनरल को नजीब रज्जाक ने हाल ही में पदभार दिया है, वहीं पूर्व अटॉर्नी जनरल को भ्रष्टाचार के इसी मामले के चलते पद से हटा दिया गया था। कथित भ्रष्टाचार के इस मामले ने नजीब रज्जाक के 7 साल के नेतृत्व पर दाग लगा दिया था, लेकिन मलेशिया के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब दामन साफ साबित होने के बाद प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की पार्टी में साख भी बनी रहेगी और राजनीति में भी उनका दबदबा कायम रहेगा।
मलेशिया के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट। भारतीय मूल के वैज्ञानिक चिन्नुपति जगदीश को भौतिकी और इंजीनियरिंग में किए गए योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया है। तेलंगाना के खम्मम जिले में जन्मे प्रोफेसर जगदीश ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं और सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे प्रोफेसर जगदीश ने अपने शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि ने जब उनसे बात की तो उन्होंने खम्मम जिले में उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपनी कामयाबी का श्रेय दिया।
हम तो हम्बल और ग्रेटफुल फील कर रहे हैं जी, ऐसा इसलिए है तो हम तो हिंदुस्तान में छोटा सा गांव से फायदा हुआ था एंड वहाँ तो है प्राइमरी स्कूल के बाद तो हाई स्कूल तो नहीं थे, आसपास में विलेज में हमारा जो मैथ्स एंड साइंस टीचर के साथ 3 साल रहते थे, सो वो टीचर का तो है वो उन्होंने तो है हमें तो इतना मदद करा, हम तो जरूर ग्रेटफुल हैं जी। उस समय में वो टीचर्स जो भी हमें तो सहाय कराए हैं हम तो उसी से है हम यहाँ पर तो पहुँच के, यहाँ पर तो अब ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में काम करके।
आज आपको याद आ रही होगी अपने घर की भी।
हमें तो है जी हाई स्कूल में तो 2 टीचर्स तो हमें बहुत मदद करा था जी, दोनों टीचर्स के बिना हम तो आजकल तो है खेती बाड़ी करना का काम में होगा जी। एंड और दूसरा टीचर को तो उनका घर में हम रहते थे, उसको अभी भी फोन करके उनसे बात करके मैं तो है उसको मैं ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर चुका हूँ।
आपने यहाँ पढ़ाया भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 85 से लेकर 88 तक, तो क्या कारण है कि क्या आपको नौकरी बाहर ले गई या आप बाहर जाकर ही पढ़ाना चाहते थे? क्या यहाँ पर वो सब कुछ मौजूद है जो एक फिजिक्स की या साइंस के फील्ड में होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए?
वो तो उस वो ये तो 25 साल से और 30 साल के आसपास के समय में इतना रिसर्च वगैरह तो है, फैसिलिटीज भी इतना नहीं है जी उस समय में एंड इतना भी फंडिंग भी नहीं है जी। आजकल तो इंडिया में बहुत फंडिंग है, बहुत फैसिलिटीज भी डेवलप हुआ है, उस समय में बहुत मुश्किल था जी। एंड वैसा भी वो तो यूनिवर्सिटी में तो है हम तो कॉलेज में काम कर रहे थे और तो यूनिवर्सिटी का पोजिशन तो बहुत मुश्किल होता था जी, इसलिए हमने सोचा यहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हमें हमारे तो है रिसर्च के लिए तो बहुत इच्छा था और रिसर्च करियर के लिए इच्छा था, इसलिए है तो लिमिटेड फैसिलिटीज में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में क्या करें। तो टीचिंग में बहुत खुशी था हमारा, स्टूडेंट्स अभी भी देन अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होने से मैं तो पहले तो कैनेडा गया हुआ था जी, बट वहाँ पर तो क्वींस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे जी, वहीं तो वहाँ जाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता जी, उस समय में ईमेल नहीं है, वेब पेज नहीं है एंड वो तो हमारा तो भी जर्नल्स वगैरह भी 6 मंथ्स के बाद आता था जी सी मेल में, 200 से आसपास में तो रिग्रेट लेटर्स आए हुए जी। हम ये कहते थे तो जब जो भी यूनिवर्सिटी का नाम हमें बताइए हमारे पास तो रिग्रेट लेटर है, तीन साल ऐसा ही रहने के बाद फिर वो तो एक हमारा फील्ड भी बदल चुके हैं जी। वो तो हम तो सेमीकंडक्टर से मैग्नेटिक्स में तो काम कर रहे थे जी।
तो आपको अपना मतलब चेंज करना पड़ गया फील्ड इस वजह से?
हाँ, चेंज फील्ड वरना।
तो सर आपको लगता है कि कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप दोबारा भारत लौट कर यहाँ पर फिर पढ़ाने का काम करेंगे, क्या आपके मन में कभी ये बात आती है?
हम तो है तो ऑफकोर्स तो हिंदुस्तान तो है तो हमारा तो ये तो है मदर कंट्री है जी। हम तो है तो ये है ना जी, इमिग्रेंट्स जैसा है हम ये कहते हैं जी, एक ब्राइट जैसा है जी। इसलिए तो हम तो है जो कोलाबरेशन वगैरह तो हम शुरू कर रहे हैं जी। एंड ऑल्सो भी ये तो हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम करके तो गवर्नमेंट वालों ने तो यहाँ पर जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक फंड शुरू करा हुआ जी। हम तो पहले से ही उसमें इन्वॉल्व करा था, हम तो उसका पैनल में भी रह के वो आठ साल के लिए वहाँ पर पैनल में रह के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हम तो सेलेक्ट करके, इसलिए तो हम तो सभी समय में सोचते हैं जी हमारा देश का हम क्या कर सकते हैं। एंड हमसे ऐसा भी है तो है ना, हम ये कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया में जो भी इंडियन लोग हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में तो वो तो इंडिया का एम्बेसडर है जी, और जब कभी भी इंडिया में जाते हैं तो ये तो ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर होना चाहिए जी।
ये थे ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रोफेसर चिनुपति जगदीश। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से एक दिवसीय सीरीज 4-1 से हारने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने आज 2020 सीरीज के पहले मैच में 37 रनों से जीत हासिल की। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
हवा में है गेंद, जसप्रीत बुमराह T20 डेब्यू पर 3 विकेट उनके खाते में, भारत को मिली है 37 रन से बड़ी जीत।
एडिलेड में खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारत ने पहले तो अपने बल्लेबाजों और उसके बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से कड़ी मात दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 19.3 ओवर में 151 रन पर सिमट गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज कप्तान एरोन फिंच और डेविड वार्नर ने 5.1 ओवर में ही 47 रन जोड़कर भारत को दबाव में ला दिया, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 89 रन पर पहुंचा और स्टीव स्मिथ 21 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर विराट कोहली को कैच दे बैठे, तो बस उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी पटरी पर नहीं लौटी। 129 रन तक तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट खो दिए थे और उसके बाद भारत ने मैच पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। अंततः ऑस्ट्रेलिया की पारी 3 गेंद पहले 151 रनों पर समाप्त हुई। कप्तान एरोन फिंच ने 44 और स्टीव स्मिथ ने 21 तथा डेविड वार्नर ने 17 रन बनाए। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी गति से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को गुमराह करते हुए अपने पहले ही 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 23 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी अपने करियर के पहले मैच में 37 रन देकर 2 और अनुभवी आशीष नेहरा ने 30 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसका फायदा उठाते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 188 रन बनाए। विराट कोहली 55 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 90 रन बनाकर नाबाद रहे।
ओहो, क्या शॉट लगाया है ये फ्लैट 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में, पैरों पे आप डाल नहीं सकते विराट कोहली को।
रोहित शर्मा ने 31, सुरेश रैना ने 41 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने केवल 3 गेंदों पर 11 रन ठोके। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा।
पहली गेंद और बड़ा शॉट,
हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत दिनों के बाद देखने मिला और क्या बात,
पुराना महेंद्र सिंह धोनी याद आ गया।
मैच समाप्त होने के बाद कप्तान धोनी ने जीत का श्रेय अपनी टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। भारत ने मंगलवार को अपना 67वां गणतंत्र दिवस मनाया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। फ्रांसीसी सेना ने भी परेड में हिस्सा लिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अम्पादी अली का कहना है कि वो इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि सीरिया में रूसी सेना ने जिस तरह से वहां की सरकार की मदद की है उससे वहां चल रहे गृहयुद्ध की दिशा बदल गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। इसे आप तक पहुंचाने में मदद की तिलक राज भाटिया ने, रेहान फजल को, सभी साथियों के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।